मैं हूं कर्म करने वाला। मैंने एक बगीचा लगाया, उस बगीचे में से एक पेड़ का एक फल हमने लिया, ये बगीचा मेरा है, ये फल मेरा है, और एक फल लेकर के उसमें से भगवान को कहा ये भगवान के लिए अर्थ, बाकी किसका है वो मेरा। मैं खाऊंगा, मेरी बच्ची खाएंगे, मेरे लड़के खाएंगे, मेरे इष्ट बंधु लोग खाएंगे, इसलिए ये सब कर्म का हो जाता है, बंधन का कार्य हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा वो बात कब तक कहेंगे, जब तक इस स्वरूपानुबंधी न हो, अगर तो आत्मा से संबंधित, परमात्मा से संबंधित, भगवान से संबंधित न हो, तब तक के लिए ये ऐसा ही चलता। राय कहे स्वधर्म त्याग यही सात दशा, समझा कि नहीं, पहले वाले में है वर्णाश्रम धर्म का अच्छी तरह से पालन करने से, और इसमें जो विष्णु भक्ति है ठाकुर में घर में नारायण शिला रख दिया, कोई रख दिया और व्यापक विग्रह रख दिया, उसकी पूजा करते हैं किसकी, विष्णु की, विष्णु इसमें लिखा, और सबकी पूजा करने से नहीं होगा, देवता देवी और सब ये सब नहीं होगा, वहां पर विष्णु शब्द उच्चारण है, इसलिए विष्णु की पूजा यदि कोई करता है किंतु उसमें कामनाएं वासनाएं हैं और उसका फल भी है संसार में सुख, स्वर्ग में सुख, यम, इसलिए जीवात्मा से संबंधित और भगवान से संबंधित नहीं होने से इसको कहा जाए योग। इसमें कर्म फलों को, अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करने की बात कही गई। मनुष्य कौन सा कर्म करता है, जड़ शरीर से जड़ कर्म करता है, जड़ चिंतन से जड़ कर्म करता है, क्या करता है, बगीचा लगाया, ये बगीचा लगाना क्या हुआ, अपने स्थूल शरीर से किया और बगीचा लगाया, और बगीचा हुआ स्थूल, उसका स्थूल फल लेकर के इसलिए ही होगा आत्मा से कोई संबंधित, और भी किस लिए करता है, अपने सुख के लिए, इसलिए ये सब मृग राजा जो थे उनको अंत में भगवान का दर्शन हुआ था। किसी ने पूछा कि उनको कैसे भगवान का दर्शन हो गया, गायों के दान करने से ही उनको हो गया, कहते नहीं गायों के दान करने से नहीं हुआ, उनको एक ब्राह्मण ने कहा महाराज इतनी गाय दान करते हैं, हमको एक भागवत पोथी दान कर दी, तो उन्होंने लिखवा करके बड़े प्रेम के साथ में कहा अच्छा ये लो लिख करके, और उनको दे दिया भागवत दान कर, उसका फल हुआ ये भगवान से उनका दर्शन, और उनके स्पर्श से उसके कर्म कर्म जितने थे वो सब समाप्त हो गए, इसके बाद में उनको भगवत हुई, अंत में भगवान से। तो एक भागवत के दान करने से, भागवत माने क्या, भागवत से संबंध किससे है, भगवान से, इसलिए उसके थोड़े से संपर्क से ही इतना बड़ा था। और जो भागवत की कथाओं को सुन करके वैसा चित्त बनाएगा परिचित जैसा, तो उसको न जाने क्या गति होगी, गोपियों के की सेवा में जब उसको लोभ हो गया और वैसा आचरण करने लगा था तो वृद्धा भाव उसको मिल जाएगा। अब वो कहते हैं महान प्रभु जी यो बात जागे कहा आत्मा से आत्मानुबंधी ये धर्म नहीं है, इस स्थूल शरीर से किया गया जन्म वाला कर्म और उसको भगवान को स्थूल रूप में दे रहे हैं और अपने सुख के लिए दे रहे हैं, अपने शांति के लिए दे रहे हैं, इसलिए ये भी बात है। राय कहे स्वधर्म त्याग एक सात दशा, स्वधर्म त्याग, यहां पर स्वधर्म त्याग माने आगे बतला अपने समस्त धर्मों को त्याग करके, त्याग करना ही ये सात। अब इसका विवरण आगे देते हैं श्लोक में, आज्ञा एवं गुणान दोषान मयाधिष्ठान स्वकान ਹਰਮਨ ਸੰਤਜ ਜਸ ਤਰਮਨ ਮਨ ਭਜੇ ਪਰ ਸਭ ਸਤਮਾਨ ਆਗਿਆ ਏਵੰ ਗੁਣਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਆਗਿਆ ਏਵੰ
ਕੈਵ ਗੁਣਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਾਦਿਸ਼ਟਾਂ
ਆ ਕਿਉਂ ਸਮਨਕ ਆ ਮਾਨੇ ਸਮਯਕ ਰੂਪ ਸੇ ਗਿਉਂ ਮਾਨੇ ਜਾਣਕਰ ਕਿਆ ਜਾਣਕਰ ਕਰਮੋ ਕਾ ਦੋਸ਼ ਔਰ ਗੁਣ ਜਾਣਕਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਹਿਤ ਜੋ ਉਸ ਪਰ ਧਰਮ ਹੈ ਵਰਣਾਸ਼ਰਮ ਹੈ ਵਰਣ ਔਰ ਆਸ਼ਰਮ ਕਾ ਧਰਮ ਇਸਕਾ ਗੁਣ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਆ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਰ ਖੂਬ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਦਿਸ ਕਾਨ ਅਪੀ ਮੈਨੇ ਹੀ ਉਸਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਬਤਲਾਏ ਹੋਏ ਧਰਮੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਔਰ ਗੁਣ ਕੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਉਪਲਬਧੀ ਕਰਕੇ ਸੰਤਤ੍ਯ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਉਸਕਾ ਜੋ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਭਜੇ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਆ ਤਾਤਪਰਜ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਸੇ ਸਮਝ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਤਨ ਬਣਾਇਆ ਚਤੁਰ ਵਰਣਨ ਮਯਾ ਮਯਾ ਸਿਸਟਮ ਗੁਣ ਕਰਮ ਵਿਭਾਗ ਗੁਣ ਔਰ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਸੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ मैंने बनाया है किंतु हमको ऐसा समझो जो मैंने नहीं बनाया उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया है और उस सबके कर्ता भी नहीं है ऐसा मुझको जो जानते हैं ये कर्म मार्ग से निष्कृति बड़ा भाई मस्ती है इनका ये बेटा है किंतु इनका बेटा नहीं है भगवान सर्वत्र व्याप्त है किंतु कहीं नहीं है व्याप्त है ये कैसा होगा कृष्णा यशोदा के पुत्र हैं किंतु किसी के पुत्र नहीं है वो अजन अजन्मान है ये कैसा होगा वो कोई भी कर्म नहीं करते सब कर्म किसी भी कर्म से उनका कोई भी संबंध नहीं है किंतु राष्ट्र इत्यादि जितने भी हैं वही करते हैं फिर क्या हुआ मैंने समझ लिया इसे कैसे होता है कई सारे लोगों को भी मुह्यंत जत सूर्य सूरी लोग भी मुक्त पुरुष भी देवता लोग भी मुक्त पुरुष भी अरे बलदेव प्रभु जी मोहित हो जाते हैं तो और हम लोगों की और ब्रह्मा इत्यादि की तो बात की क्या वो लोग भी मोहित हो जाते हैं तो इसलिए आज्ञा एवं अतः मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने वर्णाश्रम धर्म को भी उसके गुण और दोषों को समझकर समझते हैं कि इसमें दोष ही दोष है जब ऐसा समझ लेते हैं तो उसको छोड़ करके सब प्रकार से मेरा भजन कर एक तो श्रीमद् भागवत का और दूसरा इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरण अहम काम सर्व पापे मुख्यामी सर्व धर्मों को छोड़ करके माम एकम मुझे ही एकमात्र मेरे शरण में जाओ और ऐसा करने से यदि तुम्हें कोई पाप लगता है तो उन समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कोई भी पाप नहीं लगता अब इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करें इसको गीता का सार बतलाए सर्वधर्मान परित्यज्य माम गीता के ऊपर में जब हम विवेचना करते हैं विचार करते हैं बहुत से लोग तो गीता को लाख बार पढ़ते हैं रोज ही पढ़ते हैं नहीं समझते क्या उसका उपदेश है राजनीति के वाले कहते हैं राजनीति ही उसमें सार है कर्म वाले जितने हैं ना गांधी से लेकर के
राधा कृष्णन
और तिलक ये सब लोग कर्मी, सब लोगों ने कहा गीता अरविंद नहीं, अरविंद भक्ति नाम अरविंद बहुत अच्छा उन लोगों का विचार किया। तो ये सब लोग कहते हैं कि गीता पढ़ करके अर्जुन ने कहा, गीता पूरा सुना दिया और ताकि इन आतताइयों को मारो और उसे मर मारा, इसलिए कर्म करना ही गीता का, कर्म कराना ही गीता का उपदेश। हम तो देखते हैं कि अंत में अर्जुन ने क्या किया। यदि अर्जुन संन्यास ले करके चला जाता और भगवान का भजन करने लगता तो हम समझते जैसे वैसा किया, किंतु अर्जुन ने गीता सुनने के बाद में धनुष बाण लिए और लेकर युद्ध में भीष्म पितामह द्रोण कर्ण दुःशासन और सबको परास्त करके मार करके खत्म कर दिए। ये पिछली गीता का तात्पर्य है कर्म पर। कहते हैं कि ऐसा नहीं, कृष्ण ने अंतिम गीता के श्लोकों में ही कहा सर्वधर्मान पर त्यजमान एकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पाप भो मोक्षयिष्यामि, सब धर्मों को प्रत्याग करते हमारा शरण, हमारे शरण मैं जैसा करता हूं वैसा कर, तू अपने मन से मत कर। शरणागत किसको कहते हैं? शरणागत माने क्या? जिसका वो शरणागत हो जाता है वो जैसा देगा वैसा खाएगा, जैसा कहेगा वैसा चलेगा, तब तो शरणागत हुआ। और जब अर्जुन शरणागत हो गए तो कहा जैसा इनको पहले मारो, इसके बाद में तुमको दूसरा बात बतलाएंगे, मारो इनको। किंतु उनका उद्देश्य क्या था इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। प्रश्न जब आया गीता के साधारण रूप में, गीता में तीन योगों का वर्णन, कर्म योग, ज्ञान योग, जिसमें पहला संपुट है कर्म योग। कर्म नहीं, कर्म योग और कर्म में अंतर है। जिन कर्मों का योग भगवान से कर दिया है और जिसे जिन कर्मों से युक्त हो जाते हैं भगवान, उनको ही कर्म योग कहेंगे। भगवान से रहित कर्मों का कोई भी तात्पर्य नहीं है। नास्तिकों के या और जो दूसरे अज्ञ हैं उनके कर्मों को कर्म योग नहीं कहेंगे। जो कर्म भगवान से योग युक्त कर देते हैं, भगवान के लिए किए जाते हैं, ऐसे कर्मों को कर्म योग कहते हैं। ये नीचे वाला संपुट है बॉक्स का। इसमें ऊपर ढकना खोल दो और बॉक्स के अंदर में विवाह करने जा रहे हैं लड़के की, लड़की के लिए गहने बनाए गए, सोने का, बड़ियों का, नथ और ये सब, हार गले का, एक हार आज का दाम कितने लाख, सब उसमें रख और ऊपर से फिर बक्सा बंद कर दिया। तो पहले वाला कर्म योग, अंत वाला ज्ञान योग, बीच में भक्ति, अंत वाला ज्ञान योग है और बीच वाला क्या है? उसी में भक्ति रूपी रत्न रख दिया। किसमें रखा गया? कर्म योग के पिटारी में रख दिया गया और ऊपर से बन। इसलिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीन चीज नहीं है, एक ही चीज के कच्चा आम,
तीन सपा
कच्चा आम एक है, दासा आम माने जरा लाल हो गया किंतु पका नहीं, कच्चा भी नहीं होता है, क्या कच्चा भी नहीं है, पका भी नहीं है। और तीसरा है एकदम पका रसस्थ मीठा, थोड़ा सा निचोड़ दो तो रस से फट जाएगा, गिर जाएगा। एक ही चीज, वैसे ही कर्म योग, इसके बाद विज्ञान योग से संबंधित बीच की स्थिति होने पर ज्ञान योग होगा और अंत में भक्ति परिपक्व होकर के भगवान को प्राप्त। ये तीन योगों का इसमें पर, इसमें से और बारीकी से विचार करते हैं तो इसमें पहला है ब्रह्म ज्ञान, दूसरा है परमात्म ज्ञान और तीसरा है
सर्वज्ञान।
एक है ब्रह्म ज्ञान, पहला ये ब्रह्म ज्ञान, और दूसरा है ईश्वर का या परमात्मा का ज्ञान, और तीसरा है स्वयं भगवान का ज्ञान। और पहले ब्रह्म ज्ञान में हम चलते हैं तो साधारण जितने लोग हैं, जितने साधारण लोग शरीर को मैं मानकर दूसरों को मारते हैं और दूसरों से मरते हैं और उसके सुख और दुख से दुखी होते हैं, ये अज्ञ लोग। अर्जुन इसी अज्ञता को दिखला रहा है, क्या अरे ये मेरे गुरु, ये मेरे भीष्म पितामह जी, दादा परदादा, और ये दुर्योधन हमारा भाई, उसका लड़का मेरा भतीजा बेटा, और हमारे बंधु बांधव, हमारे मामा श्यालक, सब यहां पर खड़े और उनसे मुझे युद्ध करना है। नहीं नहीं करूं, ये देहात मधिया देहात्मन में शरीर में आत्मा सत्म। संसार में प्राय ऐसे ही 99% लोग देहात्मवादी, पूर्ण बुद्धि के हैं। कृष्ण ने कहा अरे युद्ध के समय में कस्मलम कुतत्वं कस्मलम इदम संपत्तितम, अरे मूर्ख मूर्ख होकर के, अज्ञानी होकर के पंडित जैसे बातें कर रहा है क्या इस लोग?
असत्य अनसत्य स्थान प्रत्यवातांश है, असत्य अनसत्य स्थान प्रत्यवातांश भाष्य गता से
यही है सारी। तुम प्रज्ञावादांश भाष्य से, तुम भाष्य से तुम बहुत पंडित अपने को समझ रहे, किंतु गताशु न गताशु नाम सोचंती पंडिता। अरे पंडित तो वो है जो चले गए हैं और चले जाने के लिए तैयार बैठे हैं, उनके लिए शोक नहीं कर। आप तू अभी जो नहीं गए हैं उनके लिए ही शोक कर रहा है, जो चले गए हैं उनके लिए शोक करता तो भी कोई बात नहीं, ये तो चले नहीं गए तो भी। अरे तुम जाएगा कि नहीं जाएगा, तुम अपने लिए शोक कर रहा है, सभी चले जाएंगे, ये राजा लोग पहले नहीं थे और हम पहले नहीं थे ऐसा मत समझो। न जाने कितनी बार आए हैं, हमको याद है मैं भगवान, तुमको याद नहीं, मूर्ख की बातें मत करो, हम जो करते हैं वैसा करो। तो कृष्ण अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में अपने को जो कहोगे वही मैं करूंगा, तो उन्होंने बतलाना पहले बतलाए थे, देखो ये तुम बातें मुंह से कर रहे हो, शरीर आत्मा शरीर तो बासाणु से जीर्णा जथा विहार नान गृहनाती नरो प्राणी तथा शरीरानी जीर्णानी संजातन अमानती। ये शरीर कपड़ा है, फट जाता है इसको बदल करके फिर नया कपड़ा पहन ले, इसमें रोने धोने का और शो करने का इसमें गुंजाइश कहां? तुम इसी के लिए रो रहे हो, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका ये कपड़ा नहीं बदलेगा। और वो जो तत्व है जो मैं हूं, नैन छिदन के साथ प्राणी नैन पावन क्लेते हम तापो नशो से मानकर अच्छे जो एम अदाय जो एम अधिकार जो एम स्थान तो अचल सनातन इत्यादि, वो तो अचल, वो अच्छेद अदाह्य, उसको शास्त्र कट में काट नहीं सकते हैं, तुम उसको वायु स्पर्श नहीं कर सकती है, आग जला नहीं सकती, और तुम उसके लिए शो करता है। जो जाने वाला है वो तो जाएगा और जो नहीं जाने वाला है वो कभी नहीं जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं, ये आत्मा और अनात्मा का ज्ञान ये है ब्रह्म ज्ञान से आम आत्मा अनात्मा का विवेक बताया प्रारंभिक में ये है ज्ञान है अथवा वो जो ब्रह्म ज्ञान का ये पहली सीढ़ी और बतलाया क्या जो प्रज्ञा माने हैं उनकी उनको किसको कहते हैं जिसको प्रज्ञा हुई क्या है समाधि स्पर्श करके प्रजाति जरा सामान इत्यादि यहाँ पर यह बतलाया जैसे कछुए हैं इच्छा होती अपने पैरों को हाथों को बाहर कर लेते हैं फिर इच्छा होती हम यदि छू दो उनको तो क्या करेंगे अब फिर चलने फिरने लगते हैं और फिर जरा छू दो ऐसा कर दो ना इतरने ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हैं वो क्या करते हैं संसार के कामों में रमते नहीं है उसमें आसक्त नहीं होते हैं शरीर ये मैं हूं ये नहीं करते मैं ब्रह्म तत्व हूं अजर अमर नित्य शाश्वत सनातन ऐसा वो समझते हैं और इन कर्मों में आसक्त नहीं होते और अंत में इनकी अवस्था क्या होती है ब्रह्म भूत प्रसन्ना समाज सर्वेशु मधभक्ति लभते परा इनकी अंतिम स्टेज है इस ब्रह्म ज्ञान की बहुत जन्म जन्मांतरों में ब्रह्मभूता प्रसन्नता ब्रह्मभूत व्यक्ति ब्रह्म में स्थित हो जाता है जब तो वो किसी भी विषय के लिए शोक नहीं करता शरीर के विपत्तियों के लिए मरने पर या नष्ट होने पर वही संसारिक वैभव के लिए संसारिक मान अपमान के लिए संसार किसी भी परिस्थिति के लिए शोक तो कुछ नहीं करता ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा वो सब समय कुछ मिल जाए तो न मिल जाए तो को, कोई अपमान कर दे तो कोई कुछ कर दे तो सब समय एक साधु जात नंदा खड़ंगा एक झोली भी नहीं रखा जिसमें वो कुछ अपना रखे कुछ भी नहीं ऐसे था बड़ा निस्पंद है शरीर बड़ा
तंदुरुस्त
स्नान न जाने कितने दिन को अपने किया बाल भी नहीं ऐसे दिखे रहे हो जाए किधर चलता है जिधर पैर चलते हैं कोई एम एंड ऑब्जेक्ट जाने का नहीं ये कहां जाना चाहिए पैर जिधर चल रहे हैं उधर ही जा रहा महाराज को जा रहे थे मैं भी या कौन जदू महाराज जा रहे थे जिनसे जदू वर्ण हुआ जदू वंश उसका वो जा रहे मैं महाराज विराज पृथ्वी का मुझको चिंताओं का अंत नहीं मुकुट माने क्या विश्व की चिंता अपने मुकुट में रख करके सिर पर रख दिया है सब लोगों की चिंता हमको अपनी चिंता राजा को सबकी चिंता होती है विश्व ब्रह्मांड की वो चिंता लेकर के मुझे दिन रात चैन से नहीं रहता देखा जी ये तो बड़े फुर्तीले बड़े आनंद के साथ में और प्रसन्न होकर के चले जा रहे हैं कभी पंचते हैं कभी कुछ कभी कुछ क्या उनको सरकार प्रणाम करके बोले महात्मा जी जड़क खाइए तो रुपये थोड़े से तो रुक गए आप इतने बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं क्यों आपके पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं है व्यवहार के लिए कोई चीज खाने के लिए नहीं है कल अभी क्या खाएंगे वो भी नहीं है किसी से कोई संबंध नहीं आप बड़े प्रसन्न हैं तो उन्होंने अपने 24 गुरुओं की बात बतलाई और उनसे शिक्षा की बात बतलाई कहीं मैं आसक्त नहीं हूं कहीं भी कुछ न शरीर में न कहीं जैसे पृथ्वी अनाशक्त है आकाश में सभी कुछ है किंतु बादल आकाश में ही है ना किंतु आकाश से बादलों का कोई संपर्क है कुछ भी संपर्क नहीं असंग निसंग है ऐसे में सबसे निसंग होकर के जो अच्छी अच्छी शिक्षाएं होती हैं उनसे सीख लेता हूं जिधर पैर चलता है चल जाता हूं बिना मांगे यदि कोई कुछ दे देता है अभ्यास व्यवस्था ले लेता हूं, नहीं तो चलता फिरता रहता हूं। सब प्रश्न ये है निर्मम निष्ठुर निरहंकारी शरीर से कोई आखिर इनको भक्ति में रख लिया जाए, भक्ति में नहीं रख है गुण ये सब इसी कोटि के हैं। इसलिए यहां पर ये जो श्लोक बतलाया गया है आज्ञा एवं गुणान दोषान इसमें यही इसके पहला श्लोक यही है उसमें बतलाया है सच सप्तम ये भी सप्तम है सच माने यहां पर एक ये भी उत्तम है। इस श्लोक के पहले ये एकादश संबंध का श्लोक है ये उसी समय का श्लोक है तो उसमें ये बतला रहे हैं अकृतद्रोह वाला जो है ना
कृपालु
कृपालु अकृतद्रोह बदान्य सूची अकिंचन मृदु मौन
सर्व
उपकार इत्यादि 26 गुण बतलाए गए तो वो उसमें एक बतलाया गया कृष्ण पास करना वो उत्तम व्यक्ति है इसको बतलाया गया तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं शौच सप्तम ये भी उत्तम है जैसे वो लोग 26 गुणों को ले करके हैं उसमें से 25 गुणों को ले लो एक को हटाओ कौन को हटाओ
कृष्ण
एक शरण हटाओ आराम समझ में ना उसमें से एक गुण को हटा दो कृष्ण एक शरण कृष्ण का शरणागत छोड़ करके बाकी जो 25 गुण हैं द्रोहाचरण करने पर भी द्रोह नहीं आचरण करता क्यों अरे ये मिथ्या संबंध है इसमें कुछ है दत्ता करे जिसमें ये तो शरीर से द्रोह करना ये तो मूर्ख और कुत्तों का काम है कुत्ते ने उसको काटा इसने उसको काट दिया तो हम क्यों अब तो सब द्रोह दो आचरण करना फिर भी नहीं करते अब बिना कारण के तो द्रोह करना तो बहुत दूर की बात ये गुण हुआ ना और अकृत दो सब पर कृपालु होते हैं बदन्य कुछ भी दे देता है अपना दुश्मन क्यों देते हैं किसी ने कुछ मांग लिया देखते हैं कि ये तो आसार चीज है इसे हमारा कोई परमार्थिक कल्याण जो मांगा उसको वही दे कहते ये सब तो मिथ्या बात है बेकार की चीज है इसलिए तो इसलिए वो सूची अकिंचन विधु बदान में जितने भी 25 गुण हैं वो लोग उत्तम कहे गए और वो यदि भगवान का शरणागत हो गए तो उत्तम हुए ना कुछ वैसे ही वो इतना परिश्रम करके उत्तम है और ये केवल मात्र भगवान का शरणागत रहा कौन जो सबको छोड़ करके भगवान का भजन करते हैं कौन सर्व धर्मान प्रतिमा में कम शरण हम कौन सर्व पाप वो ऐसे ही उत्तम है अभी शुद्ध भक्ति नहीं हुई भक्ति के द्वार पर भी नहीं पहुंचे केवल भगवान के लिए शरणागत यह भक्ति और उतने गुण वाले जो व्यक्ति हैं इतना परिश्रम करके इतना मन को दमन करके इतना उन्नत और ये छोटा सा कर दिया क्या मैं प्रभु आपका हूं आप जैसा कहेंगे वैसा ये भी उत्तम वैसा ही है इसलिए स्वच्छ उत्तम किंतु महाप्रभु जी कहते हैं कि भाई परमात्म से इसका संबंध नहीं इतना उत्तम होने पर ये दोनों कैसे पहला वो बताया और दूसरा सर्वधर्मान परित्यज्यमा एकम शरण उसी के लिए मैं बतला रहा था कि ये ब्रह्म ज्ञान जो है उसमें ये सब गुण रहते हैं क्या वो अंतिम श्लोक से बतला रहा था गीता ब्रह्मभूत जो ब्रह्मभूत हो जाता है इन गुणों को प्राप्त कर लेता है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा सब समय प्रसन्न रहता है कब उसको एक चाहता जड़ गो तभी प्रसन्न क्यों चाहता जड़ने से प्रसन्न क्या होता है जड़ शरीर को कोई मारने का मान लिया कि हमको कोई कांटा कर गया है आप कोई कांटा निकाल दे तो क्या होगा प्रसन्न होगा कि नहीं
तो हमारा आपका काम जैसा है कोई आराधन नहीं कुछ भी नहीं इससे
वो तो हुआ किंतु यहां पर कुछ बोध हो किसी को कांटा गड़ गया और कांटा निकाल दो, उसके लिए शोक करेगा? उसी तरह से किसी ने कांटा मार दिया, हमारा पूर्व जन्म का कर्म चला गया, ठीक हुआ नहीं, कर्म का फल में करके ये खत्म हो गया, अच्छा है, बहुत अच्छा, शोक करने की जरूरत बस समझ। और यदि आत्मधर्म आत्मधर्म प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, अभी तो आदेश हो राज्य सर्वधर्मान, अभी धर्म को छोड़ करके आ जाओ, और इसको डर है कि हमको पाप लगेगा, इस त्रिकुट परिवार वर्णाश्रम धर्म का हम छोड़ करके भगवान को जो भजन करने आएंगे तो स्त्री के प्रति हमारा कर्तव्य, इसको छोड़कर के हम कैसे जाएंगे? अभी छोटा बच्चा भी बिला रहा है, वृद्ध माता पिता है, ये क्या होगा? ये पाप लगेगा हमें, इसलिए तो हम लोग अभी नहीं छोड़ रहे, इसलिए ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं वो सब समय प्रसन्न, अपमान का तो कभी प्रसन्न, अपमान न करो उसको कुछ सेंट इतर दे दो तो क्या होगा? रख लिया क्या कल गिर गया, कोई चिंता नहीं, ब्रह्म पूजा प्रसन्न आत्मा, न सोचति, कोई कामना ही नहीं करता है, चला जा रहा है, कहां चला जा रहा है, कोई कुछ है ही नहीं, कोई गोद नहीं, कोई पूछ नहीं, ये कहां जाए, कुत्ते महाशय जा रहे हैं, उनका तो कोई गोल है, मील पत्थर उनको चाहिए, वहां पर वो पैर उठाया फिर वहां से लौटा, बड़े बिजी है, व्यस्त है, ऐसे हम लोग भी कर्मों में, इसलिए कहते हैं ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती, कोई शोक नहीं, अभी हम नहीं जाएंगे समय पर, हमारे मुवक्किल लोग लौट जाएंगे, और मुवक्किल लौट जाएंगे तो पैसे आएंगे नहीं, सुना यहां से जाकर के भाई आज तो बहुत बड़ा था, ये एक मुवक्किल लाया, उस समय खबर क्यों नहीं दिया, मैं चला आता, उसके लिए तो सब कुछ होगा, उनको कोई चिंता नहीं है, ब्रह्मभूतों को जगत का लाभ और हानि दोनों बराबर है, बल्कि हो जाए खत्म तो ही अच्छा है, न सोचति, किसी चीज की आकांक्षा कामना वासना नहीं करता, न कांक्षति, न सोचति मैंने शोक करता है, न आकांक्षा कामना करता है, अब उसको किस लिए दू? अच्छा ऐसे व्यक्ति का मन चंचल होगा कि नहीं? क्रोध किसको होता है, मन चंचल किसका होता है? जिसको कामना है, जिसको कोई कामना वासना है ही नहीं है, उसको मन चिंतित किस लिए होगा? लड़की की शादी करना है, स्त्री कह रही है महाराज जनक से, तो जनक की क्या करते हैं? ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं, उनको कोई जरूरत है, हुई कि नहीं हुई, क्या होगा? नहीं नहीं हुई तो भी, हो गई तो भी, कोई मतलब नहीं, ऐसे ब्रह्म तो इसका फिर अंत में क्या होता है? ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती, समस्त सर्वेश भूतेषु, सर्वेश भूतेषु
समस्त प्राणियों में समभाव है,
यहाँ पर समस्त प्राणियों का कहने का यह तात्पर्य है, जिन प्राणियों से उनको दुख होता है, जिन प्राणियों से उनको सुख होता है, ये सर्व प्राणियों का तात्पर्य, जैसे कि सांप है, सिंह है, गाय है, भैंस है, बैल है, मनुष्य है, शत्रु है, मित्र है, सब में गीता में भी बताया गया,
विद्या विनय संपन्न,
विद्या विनय संपन्न ब्रह्मण कवि भक्तिनी
समिति,
वो पंडित तो ऐसे समदर्शी हो जाते, सुख दुख सब में सब, कहीं उनका कोई भाव नहीं, ऐसा व्यक्तियों को हृदय निर्मल रहने पर यदि किसी संत का भेद हो गया, दर्शन हो गया, तो क्या होगा? भक्तिम लहते पराम, पराम भक्तिम पराभक्तिम, इसमें दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक तो वो है इनको साधु, वो तो पराभक्ति लाभ कर जाए, और जिनको नहीं हुआ वो दो प्रकार के, कौन? एक भगवत और भागवत चरणों में
अपराध,
अपराध और एक निरापराध। जो ये कहते हैं कि भगवान का कार्य नहीं है, भागवत क्यों है ना, ये ठीक ग्रंथ नहीं है, ये तो जिनका चित्त मलिन होता है इन लीलाओं कथाओं को पढ़ते हैं, बहुत से मायावादी अद्वैतवादी लोग ऐसा करते हैं। भगवान का जन्म ही नहीं है, कर्मी नहीं है, नामी नहीं है, तो उनकी लीला क्या होगी। इसलिए थर्ड क्लास के लोगों को ये अपराधी है। भगवान का कृष्ण गोविंद नाम ये सब औपाधिक नाम है, उनका नाम क्या है, ब्रह्म परमात्मा
त्राता नियंता जगत
ब्रह्म चीज, ये सब जो है ये उनके नाम। तो इसमें जो चीज ब्रह्म इत्यादि कहते हैं वो लोग तो निरपराधी, और जो लोग वैष्णव की निंदा करते हैं, भागवत की निंदा करते हैं, कृष्ण चरित्र की निंदा करते हैं और कहते हैं कृष्ण का शरीर भी हमारे जैसा भाई था, वो भी मर गए, उन्होंने भी जन्म लिया, ये अपराधी, इन लोगों को कभी भी भक्ति नहीं। और जो निरापराधी हैं उनको वैष्णवों का संग होने पर, जैसे सुखदेव गोस्वामी के जीवन चरित्र में और सनक सनंदन सनातन के चरित्र में ये बताया, उनको ब्रह्मा और सुखदेव को व्यास जी के संग से उनको पराशक्ति लागू। और इसमें कहते हैं कि वो जो बतलाया ये श्लोक के नीचे है, कौन सा श्लोक मैंने जो बतला रहा था, ये ब्रह्म ज्ञान जो हुआ ये हुआ पहला, यहां से आरंभ होगा। दूसरा है इसको कहते हैं गुह्य ज्ञान, और गुह्यतर ज्ञान परमात्मा के प्रति जो ज्ञान है, परमात्मा का जो ज्ञान है, ईश्वर का जो ज्ञान है, उसको कहते हैं ये गुह्यतर। कैसे, गीता का सब ज्ञान बतला करके 18वां अध्याय में बतला रहे हैं, ईश्वर सब भूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सब भूतानि जन सर्वाणि मायया। भगवान एक बनाए हैं कर्म चक्र, उसके हृदय में बीचों बीच में वो बैठते हैं और उस पर जीव को बैठा देते हैं, बैठा करके जो लोग उसमें रत लग जाते हैं, मैं कहां हूं वो क्या ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति, सब हृदय में वो परमात्मा के रूप में भगवान कौन कर रहा है, कृष्ण, मैं अपने अंश परमात्मा से सब जीवों में मैं और क्या करता हूं, ध्यान यंत्र रूढ़ानी, मैं मेरे पास में एक यंत्र है और यंत्र पर उसको बैठा देता हूं और यंत्र को चला देता हूं तो वो भी चलने लगते हैं। यंत्र रूढ़ानी माया, अपनी माया के द्वारा कर्म रूपी चक्र के ऊपर में उनको बैठा करके उनको आरूढ़ करा करके भ्रमण करा, मैंने कहां भ्रमण करा रहा हूं, 84 लाख प्रकार की जोनियों के यंत्रों में बैठा करके कर्म में आसक्ति उनको रखने की वजह से उच्च और नीच जोनियों में, देवता जोनियों में उनको सुख और दुख में कौन करा रहा है, यंत्र रूढ़ माया के द्वारा। वो कहता कि मैंने किया किंतु मैंने नहीं किया, यही उसका दोष है। जो कुछ भी कार्य होता है उसमें भगवान का अनुमोदन होना चाहिए, उसमें जीव की इच्छा होनी चाहिए, माया का योगदान होना चाहिए, पूर्व जन्म का संस्कार होना चाहिए, इतना मिलकर के तो कर्म होता है। किंतु ये क्या जीव का क्या होता है, अहंकार वो अपने को करता था, हम लोग नहीं करते। ये जो बतलाया गया इसके बाद ही कहते हैं, इसका बात का इश्यू क्या, सत्य विष्टे तदा अंतरम,
ہوئی ہے اور اس کے بعد میں ہے
کہ وہ اس کے بعد میں بھگوان کو آتم سمرپن کر کے پرا شانتی ادھگچھتی تمہیں سرو بھاوین بھارت تت پرساد پرم شانتی پاپتی شانتی. اس کو کہا گیا دکھیا پر ارتھات وہ جو پرماتما ہے جو کہ کرم چکر میں جیووں کو بھرمن کرا رہے ہیں ان کے ہردے میں رہتے ہیں ان کو جو ان کے لیے جان لے اور ان کے چرنوں میں آتم سمرپن کر دے یہ گوہیا پر جان.
اور کیا شلوک
کمی و شرم گمی و شرم سب بھاوین سب بھاو سے آپ کے کس کے وہ جو پرماتما تھا نا جو جیووں کے نیمتا ہیں ان کے چرنوں میں جب وہ آتم سمرپن کر دیتا ہے تو اس کے پرساد سے پرساد مانے کرپا سے شانتیم ستھانم پاپ سے سوشا سرپت ستھان اور شانتی یہ بدھی ہے. اب اس کے بعد میں کہتے ہیں بھگوان ارے تم میرے بڑے پر تم کو میں بہت پھٹکاؤں گا نہیں تم سب سے بڑے میرے پری ہو اس لیے سر بگو ہی اتمن سنے کرم بچا کیا تو تم ہمارے سب سے پریو مٹی تو بخشا متے ہتم تمہارے ہت کے لیے میں بتا رہا سب سے گوپنیہ چیزیں سرو گوہیا تمم پہلے بات لایا گوہیا برہم گیان ہے گوہیا چیت اچیت کا چیتن اچیتن کا وویک جو ہے یہ ہوا گوہیا آیا سمجھ میں. اور اس کے بعد میں سنسار کے پرتی اناشکت ہو کر کے سب کچھ کرتے ہیں اس میں کسی میں پرسن نہیں رہتے سب میں پرسن رہتے ہیں سوک تک نہیں کرتے یہ برہم گیان اس کی انتیم پردی ہے برہم بھوتا پرسن. دوسرا آرمبھ ہوا اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب لوگوں کے جو اپنے ہردے میں بھگوان رہتے ہیں اور سب کو وہی کرم چکر پر آرمبھ رہ کر کے ان کا پھل دینے والے ہیں کیوں نہ ان کے شرناگت ہو جاؤ جب ان کا شرناگت ہو جائے گا تو ان کی کرپا سے اپنے آپ شانتی سکھ سب کچھ اس سے یہ سہج کنتو اس سے ان اور اب کیا بتلا رہے ہیں تم کو میں میں ستیم کے پرتیجان ہوں پریوسی میں میں پرتیجیا کر کے کہتا ہوں کرشن یہاں پرتیجیا کر رہے ہیں. ارجن نے کہا جب پربھو میں متھرا واسیوں کے لوگوں کے اوپر میں جن کا متھرا میں جنم ہوا ان پر میں وشواس نہیں کرتا وہ تو دس بار بات بدلتے ہیں یہاں کے جتنے لوگ ہیں چوگوں سے لے کر کے یہاں کے رہنے والے بیٹھنے بزنس کرنے والے جو کچھ بھی متھرا میں جنم لیا وہ سب باتیں اپنے باتوں کو بدل لیتا ہے اس لیے آپ پھر بدل دیں گے کچھ تو آپ پر وشواس نہیں تو انہوں نے کہا میں شپتھ کرتا تو میں نے کہا یہ شپتھ کو بھی نہیں مانتا ٹھیک اچھا میں تمہاری شپتھ کرتا ہوں میں نے تمہارا تمہارے لیے شپتھ کرتا تم بھکت ہے نا پتی جانو میں پرتیجا کرتا ہوں کہ تم بھکت ہے میں تمہارے جب ہی ہوگا تب تمہاری بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوگی یہ وشواس رکھ میں تمہاری تمہارے سر پر رکھ کر کے میں سب کو شپتھ کرتا ہوں یہ میں جھوٹ نہیں کروں. کیا کہا انہوں نے تب من منا مد بھکتو مدی آدی مام مام ایو ایشی پتی جانو پری من منا بھو چت کو ہمارے اندر میں دے دو جیسے کس نے دیا کرشن نے سوئن کہا جائے تھا کس نے دیا جگت میں کسی نے ایسا نہیں کیا تم سروتم روپ میں دو پرہلاد مہاراج نے کچھ دیا کنتو گیان تک ہی سیمت رہے اپنا ہردے نہیں دیا مستک دیا ہردے نہیں دے سکتا سب جگہ بھگوان کو دیکھ رہے ہیں اور سب میں بھگوان کو بھی دیکھ رہے ہیں کیا उस भगवान की जो जिसको देख रहे हैं उनकी चरण सेवा किया, उनको पानी पिलाया, न क्या किया उन्होंने, देखा तो सब तो देखने तक समित रहे, इसलिए ये ज्ञानी भक्त के अंतर्गत में है। अनन्य भक्त गोपियों जैसे अपने हृदय को देकर के उनकी सेवा करने वाले नहीं, इसके लिए फिर चलना पड़ेगा गोपियों के यहां। कृष्ण से थोड़ी सी थोड़ा सा योग उनका हो, गोपियां कैसे उन्मत्त हो गई, पैरों से पूछे कृष्ण को देखा, हमारे कृष्ण को देखा, किरणों से पूछ रही, नदी से पूछ रही, जिसको देख रही उससे, यहां तक कि तन्मय होकर के अपने को कृष्ण मान करके गोवर्धन को धारण करने की लीला कर रही, कोई पुतना को पकड़ लिया, पुतना जैसे कोई स्त्री को, और पुतना समझ करके उसके स्तन पान करने लगी, अपने को कृष्ण मानकर, कोई यशोदा बन करके और कोई कृष्ण स्वयं बन करके वो रो रही है, मैया अब नहीं, अब मैं चोरी नहीं करूं, और रो रहे ऐसी करती जाऊं तो अंत में कैसी, जैसे कृष्ण को सब वस्तु दे देती है, ऐसे पागली उन्मादग्रस्त हो जाती है, जिसका मैं उदाहरण देकर के कहता हूं, कैसा मन मना भाव, कोई गोपी खड़ी है कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, बस ये चारों तरफ ब्रज में यह बात घोषित हुई, नंद बाबा के किसी प्रतिहारी ने थोड़ा ढोलक बजाता हुआ आगे आगे चारों तरफ में घूम रहा है, बतला जे कृष्ण गोचारण से जा रहे, ब्राह्मण और सज धज करके आ रहे हैं, किस लिए कृष्ण गोचारण से जा रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, जो सुदामन जा बुलाएगी और रक्षा मंत्री इत्यादि, और हमको कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी, ये चारों वहां से दौड़े आ रहे, जब हम जल्दी चले नहीं तो यदि कृष्ण चले गए तो दान दक्षिणा, और बेटा एक दिन साथ जाए, ये तुम्हारी आंख में काजल लगाया है इसमें भी लगा दू, मैं लोग यदि चले जाएंगे कृष्ण को, और वो आ रहे हैं गैया जम हरम आ रही है, जल्दी से छोड़ मैया पकड़ करके छोड़ती हूँ, इस आंख में वो आगे में पूछता है बैठता है जर चंचल होकर के, और रहा नहीं जाता उससे, और बच्चे किस लिए, कृष्ण गोचारण जाएंगे, हम उनके साथ में गोचारण के लिए जाएंगे, और जैसे चले जाएंगे तब तो कल मुश्किल हो जाएंगे, मैं कहते बेटा तू रहो जैसा काजल लगा दिया, एक ये हार पहना दू, तुम जाएगा निर्धनों जैसा दरिद्र होकर के, और वहां पर बड़े बड़े गोपों के कितने कितने सुंदर लड़के आते हैं, और सब उनकी माताएं सजा रहे हैं, और तुम जल्दी से भगा क्यों जा रहे हो, था जब हार लगाने जा रहे नहीं भैया और वो मैया दौड़ करके जा रहा है, उस दौड़ते हुए उसको पहना रहे, लड़कों ऐसे चंचल हो, माताएं जो हैं कृष्ण जा रहे हैं तो सुबह अपने लड़के को लाल लड़ाएगी, वो भी अपने बच्चों को छोड़कर के वहां पर जा रहे हैं, और कुछ नवेलियां हैं, नवेलियां भी जिनकी अभी दो चार पांच दिनों में शादियां हुई हैं, घर से बाहर नहीं जाती, सूर्य भी उनका मुख नहीं देखता, बड़ी सुंदरी गोपी विवाह करके अभी आई है गोकुल में, गोकुल मैंने वृंदावन में नंद गांव में या ऐसे वो जाने के लिए उठ रही है बैठ रही है, देख रही है सास न देख रही, सास ने देख लिया, अरे कहां जा रहे तो कुछ उत्तर नहीं दे, अरे मत जाना काला सांप दस देगा काट देगा, तो जाने नहीं देते तो उसको पकड़ लिया, बैठ जा मत जा, अब उसे रहा नहीं जा सकता, अरे तेरी बेटी किस लिए गई, हम ही को मना कर रही है, ब्रज में ऐसी कोई लड़की लड़का कोई वृद्ध कोई ऐसा है जो नहीं गया, बस मुझको नहीं जाने देगी, अच्छा तो तू क्यों जा रही है, इस तरह से दोनों में वाद विवाद हुआ, अंत में उसको भी छोड़ दिया उसको, और वो उसको हक्का मुक्का देकर के और छुड़ा करके वो एकदम दरवाजे पर चली गई, सभी लोग जितने यहां तक कि अंधे व्यक्ति भी कृष्ण को दर्शन की लालसा से वहां पर पहुंच जाते हैं,
वो नवेदी भी वहां पर पहुंच गई, दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और खड़ी हो गई बस और पलक से कृष्ण को देख रही है। कृष्ण कृष्ण कितने सुंदर है, परहा पीड़म नट वर बपू, विश्व में नारायण भी ऐसे सुंदर नहीं। दरवाजा के सामने आए, उन्होंने देख लिया इसके अंदर में भावना कैसी है, बस दूर से उन्होंने देख लिया, देख करके एक बछड़े को चिमटी काट दी, उसके चिमटी काटना मैंने उस बच्चे के पूंछ में वो रहता है कुछ भावना रहा, बस छुआ और वो उछला कूदा और वो भागा। तो कृष्ण ने उसको ऐसे डिरेक्शन दिया जो ठीक उसके दरवाजे की तरफ में भागा और ये दौड़ते हुए बहाना मिल गया है, उसके बछड़े को पकड़ने आ रहे हैं, दूसरा कोई मतलब नहीं है, बछड़ा उधर ही भागा उधर ही आए, एकदम दरवाजे तक जब आ गए तो वो देखती एकदम तन्मय हो गई है, बस देखती ही रही और झट कृष्ण बछड़े को छोड़ करके बंसी लेकर के उसके यहां पर थोड़ा सा उसको झकझोर दिया लगा दिया, अब तो एकदम तो तन्मय हो रही थी एकदम डूब गई, छोड़ करके हंसते हुए उसका प्राण और उसका मन आत्मा सब कुछ उसको ले, बस कृष्ण ने अपने आप ले लिया, वो चली गई, कृष्ण चले गए। वो कृष्ण को देखती रही जब तक देखती रही, बछड़े सब चले गए, कृष्ण का बल चला गया, कृष्ण भी चले गए, धूल भी वो आकाश में जो उड़ रही थी बस वो भी धीरे 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 वो वहां की जहां की तहां सास आई, अरे तुमको कहा था ना यहां पर खड़ी हो, क्या कर रही है, चल कर, कभी नहीं सुन रही, मन तो हो तो मन तो है नहीं, मनमना भव, उसने मन कृष्ण ने जबरदस्ती ले लिया है, वो मनमना भव हो गई है, इसलिए खड़ी रही, उसको पकड़ करके ले आए बैठा, देखा जी इसको तो होश नहीं, अरे दधी मंथन करो, बस घर में गई और एक हड़िया ले आई और चलावनी उसकी सास ने दे दिया, बस हड़िया में रख करके चलाने लगी तो वो खर 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 कर रहा, उसमें सरसों था, बस सरसों को दही समझ करके चला रही, कहिए देखो तो इसकी स्थिति, फिर घड़ा दे दिया, रस्सी दे दी, जाओ पानी भर लाओ, और बच्चे को एक दूसरे बच्चे को गोद में बैठा दिया, अभी होश आ जाए चलने फिरने से, बस घड़ा पर घड़ा ले लिया, बच्चे को भी ले लिया, मोटी रस्सी भी ले ली, बच्चे को गोदी में लेकर के चल पड़ी, कुएं में रख दिया, घड़े को रखा, बच्चे को भी रखा, रोड निकाली उसमें फांस लगाया बच्चे के गले में दे करके बच्चे को कुएं में डाल दी, वो समझ के घड़े को दे रही, अरे देखो तो इसको भूत लग गया, किसी ने कहा भूत नहीं नंद का भूत लग गया, इसको कहते हैं इसके बाद में लोगों ने पकड़ दिया, बच्चे को पकड़ दिया, फिर उसको सास के पास, अरे इसको क्यों भेजा, अब मन ही नहीं है, ऐसे ही समस्त गोपियों का चित्त मन मना भव, कृष्ण ने उद्धव को कहा था कि गोपियों का चित्त ऐसा ही देह है, गाय कहीं भी मन नहीं है, ये भागवत का मूल तात्पर्य है, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ये गीता का भी सूत्रों के रूप में यही मूल तात्पर्य। अर्जुन ने कहा कि ऐसा मेरे लिए संभव नहीं, तो फिर अर्जुन को कहते हैं मन मना भव मद भक्त भव, मेरे भक्त बन जाओ, श्रवणम कृतम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, ये सब भक्तों के चरण में समर्पित करके फिर दीक्षा ले करके और भजन करो, अरे ये कहां युद्ध में होगा, तो फिर और कोई उपाय मत लाइए, जजनम मेरा जजन करो, जजन मैंने क्या है अचन इत्यादि, या ये जो भी कह रहे हैं ना ये सब अंततः ये भी तो करो, समर्पण करके हमारे लिए क्या पत्रम पुष्पम फलम तो ये मुझे में भक्त आते यच्छति तद हम भक्ति पहतम स्नानी प्रजाता, ऐसा करो कहीं ये भी मुझसे नहीं है, आप और कोई सीधी सी बात, अच्छा मां नमस्ते ए बार मेरा प्रणाम कर दो, कभी कोई भवंदन में नहीं पाता,
प्रणाम न पुनर्भव,
एक बार प्रणाम करने से ही भगवान, ऐसे लोगों को दुष्टों को पकड़ करके लाना हमारे पास में जम कर रहे हैं, जिनका सिर कभी भी भगवान के लिए नहीं
भगवान,
जो भगवान का नाम नहीं कीर्तन किया, जो लोग भगवान को प्रणाम नहीं करते, भगवान की कथाएं नहीं सुनते, ऐसे दुष्ट लोगों को पकड़ करके लेना, उनको मैं दंड दूंगा। और जिनके गले में तुलसी देखना, माला देखना, भगवान का नाम करते हैं, एक बार भी 65 घंटा भी ठाकुर को बजा दिया, भक्तों की कथाएं सुन रहे हैं, भगवान की कथा, उनको खबरदार, 1000 माइल की सीमा में मत जाना, जाएगा तो तुम्हारा कल्याण होगा। इस तरह से ये गीता का सर्वोत्तम रहस्य आगे कल पंचाकल्पुर्गस्त कल हम लोग
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.